Hare Krishna, this is a lecture by His Grace Rupani Krishna Prabhuji on 4th Canto, 23rd chapter, verse number 3 on 1st February 2007.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 23। अध्याय का नाम है महाराजा पृथु का भगवत धाम गमन। श्लोक संख्या 1 से 3, बोर्ड में श्लोक संख्या 3 लिखी है। तो आज से हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आत्मजेषु आत्मजान न्यस्य विरहात् रुदति एव प्रजासु विमनासु एकः सदारः अगातान् तपहवनम्। आत्मजेष्वात्मजान्यस्य विरहानुद्रादिमित्मव प्रजासु विमनःस्वेकः सदारागात्तपोवनम्। आत्मजेषु आत्मजान्यस्य विरहादुदतिव एव प्रजासु विमनःस्वेकः सदारागात तपोवनम्। आत्मजेष्वात्मजोन्यस्य विरहारुद्रातिमिवव प्रजासु विमनःस्वेकः सदारागात तपोवनम्। आत्मजेषु अपने पुत्रों को आत्मजान पृथ्वी को न्यस्य सूचित करते हुए विरहात वियोग से रुदतीव इमा मानो विलाप करती हुई प्रजासु प्रजा को विमनहसु दुखियारों को एकहा अकेले सदा रहा अपनी पत्नी सहित अगात चला गया तपावनम वन में जहां तप किया जा सके। इससे पहले के दो श्लोक और हैं जिनका अनुवाद इकट्ठा है, तो मैं पढ़ देता हूँ दो श्लोक फिर अनुवाद इकट्ठा पढ़ लेंगे। मैत्रेय उवाच दिष्ट्वात्मानं प्रव्यसमेकेदा वेन्य आत्मवान आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्ग प्रजापति जगत्तस्थ शुष्वापि वृत्तिदो धर्मभित्तसाम निष्पादिताश्वरे देशो यथर्मीह जग्गीवान। आत्मजेषु आत्मजाम्यस्य विरहारुद्रात्मं एव प्रजासु विमनःस्वेका सदारो अगात तपोवनम्। इसका अनुवाद दोहराएंगे। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, तो उस महापुरुष ने जो संसार का राजा था अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका पेंशन की व्यवस्था कर दी और श्री भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को अपने पुत्रों को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को जो राजा के वियोग के कारण विलख रही थी त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। तात्पर्य, महाराजा पृथु भगवान के शक्त्यावशेष अवतारों में से एक थे, अतः वे इस पृथ्वी पर भगवान के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त लोकों के स्वामी हैं और वह देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्रत्येक लोक के वासी सुख पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्म करते रहे। ज्यों ही कर्मों के पालन में कोई त्रुटि होती है कि भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, कि जिसकी पुष्टि भगवद गीता में 4.7 इस प्रकार हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम्। चूंकि राजा वेन के शासनकाल में अनेक त्रुटियां थी, अतः भगवान ने अपने सबसे विश्वासपात्र भक्त महाराजा पृथु को सब कुछ ठीक करने के लिए भेजा था। फलतः भगवान के आदेशों को पूरा करने तथा संसार के मामलों को तय करने के बाद महाराजा पृथु कार्य मुक्त होना चाह रहे थे। उनका प्रशासन आदर्श था और अब उनका कार्य मुक्ति काल की भी आदर्श होना तब उनका कार्य मुक्ति काल भी आदर्श होना था। फलतः उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और उन्हें संसार का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। फिर वे अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण बात है कि महाराजा पृथु अकेले वन गए और अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेते गए। वैदिक नियमों के अनुसार रस जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकता है, क्योंकि पति तथा पत्नी एक इकाई माने जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों मोक्ष के लिए साथ साथ तपस्या कर सकते हैं। महाराजा पृथु ने इसी मार्ग का अनुसरण किया और यही वैदिक सभ्यता की भी विधि है। मनुष्य को अंत काल तक घर पर नहीं रहना चाहिए, अपितु उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से पृथक होकर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर के शक्त्यावशेष अवतार होने के कारण महाराजा पृथु का जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में वैकुंठ से आए थे, भगवत धाम जाना निश्चित था, तो भी सभी प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों गृह त्याग के बाद तपस्या करने के निमित्त अनेक तपोवन होते थे। निस्संदेह श्री भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तपोवन जाना अनिवार्य था, क्योंकि पारिवारिक जीवन से विरक्त होना और साथ ही घर में रह आना अत्यंत कठिन होता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
सबका हार्दिक स्वागत है इस भगवत कक्षा में। तो आज से हम इस चौथे स्कंध का 23वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है महाराजा पृथु का भगवत धाम गमन। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि महाराजा पृथु की चार कुमारों से भेंट, तो चार कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों से भेंट के बाद उसका परिणाम क्या हुआ, महाराजा पृथु का भगवत धाम गमन प्रारंभ हुआ। तो ये संत पुरुषों से मिलने का, भेंट करने का, संग करने का ये परिणाम होता है कि हमारा भगवत धाम जाने का गमन प्रारंभ हो जाता है। तो इस श्लोक में मैत्रेय मुनि जी बता रहे हैं कि किस ढंग से महाराजा पृथु ने अपने आप को पारिवारिक जीवन से रिटायर किया, उनके क्या रिटायरमेंट प्लान थे, किस ढंग से उन्होंने अपने गृह जीवन को छोड़ा। तो बता रहे हैं अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराजा पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, तो उस महापुरुष ने जो संसार का राजा था अपने सारे ऐश्वर्य को अपने पुत्रों में बांट दिया और अपनी पत्नी के साथ एक जगह लिखा है स्वीका एका और अगली जगह है सदारो, अकेले भी बोला अकेले वन में चले गए। नहीं, अकेले वन में कैसे गए, पत्नी के साथ। तो अपनी पत्नी के साथ अकेले वन में चले गए, या तो पत्नी के साथ अकेले कैसे हो गए, कि अकेले इसीलिए है कि वहां भी जा रहे हैं दोनों एक ही इकाई हैं, पति पत्नी एक ही इकाई हैं, एक ही तात्पर्य है कि अब भगवत धाम वापस जाना है और इकट्ठे मिलकर तपस्या करनी है। तो ये है उनका त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। कहां गए, तपोवन में। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस काल में तपोवन की सुविधा थी कि जितने भी जो ग्रस्त हैं उनको ये उनसे आशा की जाती थी कि अपने गृहस्थ जीवन के अंत में वो सब कुछ छोड़कर तपोवन जाएंगे, पत्नी साथ में जा सकती है अगर वो भी भगवान नाम जाने की इच्छुक हो, नहीं तो हर जीव को ये करना ही है। ऐसा हो ही नहीं, संभव ही नहीं है कि अंत समय में घर में रहते हुए भी आप घर से विरक्त हो जाएंगे, जैसा कि आजकल लोग कहते हैं। आजकल तो लोगों का ये कहना है कि किसी ढंग से गृहस्थी को पाल लें, यही सबसे बड़ी भक्ति है, और यही भक्ति करते करते शरीर को त्याग दें, बस अंतिम समय में घर वाले सब आसपास घेर के खड़े हों, उन सबको देखते हुए पोते का मुंह देख लो, पोती का मुंह देख लो, पोते के लड़के का मुंह देख लो, लोग इतने तरह की इच्छाएं करते हैं, उसका मुंह देख लो क्या हो जाएगा, उसका मुंह देख के दोबारा से जन्म छूटेगा। कृष्ण का मुख देखते हुए भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों को रोक के रखा कि कृष्ण मेरे सामने आएंगे, उनका मुख देखते हुए मैं शरीर त्यागूंगा। हरिदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु की बाजुओं में अपने शरीर को त्यागा कि उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए मैं शरीर को त्यागूं। और यहाँ भौतिक जगत में एक साधारण व्यक्ति की क्या आशा अभिलाषा होती है कि बेटे के बेटे के बेटे को देख लो तब मैं शरीर त्यागो, ताकि फिर भी मैं वैसे ही मैं भी रोता हुआ माँ के घर में घुसूं, वहां पे तरह तरह के कष्ट सहूं और बाहर आऊं। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन जो कि भगवान के योजनाओं से बिल्कुल भिन्न है। भगवान की क्या योजनाएं हैं, श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवदगीता में भगवान को बताया गया है सर्वलोक महेश्वर, और भगवान यहां श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत उत्सुक रहते हैं कि प्रत्येक लोक के सारे जीव सुखपूर्वक रहे, केवल एक ही लोक नहीं है, अनेक लोक हैं, असंख्य लोक हैं, और भगवान उन सबके मालिक हैं। तो भगवान की ये इच्छा है कि प्रत्येक लोक में जो जीव है वो सुखपूर्वक रहे। तो सुखपूर्वक रहने के लिए भगवान ने हमें तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की रोशनी है, वर्षा है, सागर है, पहाड़ है, पेड़ पौधे है, ये सब हमारी सुख सुविधाओं के लिए है। तो उसी सुख सुविधा से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। भगवान ने इस भौतिक जगत में जब जीवों के लिए वर्णाश्रम धर्म की भी स्थापना की है, चतुर्वर्ण मयाशिष्टम गुण कर्म विभागशः, कि चार वर्ण और चार आश्रम ये बद्ध जीवों के भलाई के लिए है। हम सब यहाँ पर भगवान से विमुख होकर आए हैं। तो जैसे जीव इस भौतिक जगत में गिरता है, उसके ऊपर दो कपड़े डाल दिए जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से हम सब बंध जाते हैं, तभी हमें बद्ध जीव कहा जाता है। तो हमारे अब जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद कि इन दोनों के दोनों कपड़ों को, इस बंधन को हमें इनसे मुक्त होना है, स्थूल शरीर से भी मुक्त होना है और सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त होकर वापस भगवत धाम जाना है। ये कार्य केवल मनुष्य देह में ही हो सकता है, किसी और देह में संभव नहीं है। तो मनुष्य देह में हमें मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूं, सूक्ष्म देह क्या है, स्थूल देह क्या है, इतना ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहीं से हमारा मनुष्य जीवन शुरू होता है। अगर हम यही नहीं पहचान कर पाएंगे कि मैं अलग हूं, मैं स्थूल शरीर से अलग हूं, मन से अलग हूं, मैं एक आत्मा हूं, अगर ये नहीं जाना तो मेरा मनुष्य जीवन आरंभ ही नहीं हुआ। एक सड़क पर चलने वाला कुत्ता भी अपने आप को कुत्ता समझता है कि मैं इस क्षेत्र का कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं कबूतर हूं, वो भी यही सोचते हैं। और अगर हम भी यही सोचे कि मैं मनुष्य, मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इस भेद को हमने अच्छे ढंग से समझना होगा। जब तक हम इस भेद को नहीं समझेंगे, हमारे लिए हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा। ये बात समझने अति आवश्यक है, तभी से हमारे जीवन के सारे कार्य सही दिशा में जाएंगे कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं यहां पे एक कैदी हूं और मुझे मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए सबसे उत्तम देह, सबसे उत्तम व्हीकल साधन मेरे पास इस समय है, इसी से मैं भगवत धाम वापस जा सकता हूं इस देह का प्रयोग करके। तो ये बात जब स्पष्ट हो जाएगी तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर हो जाएगा। फिर मुझे अपने जीवन को इस ढंग से बिताना है कि कैसे मैं इन देहों से मुक्त हूं। तो इसको बोलते हैं डिसएंटेंगलमेंट प्लान। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमें अपनी योजना के अनुसार चलना चाहिए। हमारी योजना ये होनी चाहिए कि इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं मुक्त हो जाऊं। तो आयु हरति वे पुंसाम उद्यन अस्तंचर्य न सो, प्रतिदिन सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से हमारी आयु हरती जा रही है, हमारी आयु कम होती जा रही है। तो जब आयु कम होती जा रही है, इसका मतलब हमारे पास समय कम होता जा रहा है। अब उतने कम समय में क्या मैं अपने लक्ष्य की तरफ प्रगति कर रहा हूं? ये हमें देखना चाहिए, क्या मेरा इस भौतिक जगत से आकर्षण कम हो रहा है, भौतिक जगत से रुचि बढ़ती जा रही है कि कम हो रही है। तो इस ढंग के इसको बोलते हैं असली एडवांसमेंट। मटेरियल एडवांसमेंट देखा जाए तो एडवांसमेंट है ही नहीं, ये दोनों के दोनों शब्द बहुत बड़े धोखा देने वाले हैं। भौतिक किसी चीज की एडवांसमेंट हो ही नहीं सकती, भौतिक चीज का तो हमेशा क्षय होता है, समय के प्रभाव से उसका क्षय होगा ही होगा। एडवांसमेंट क्या होगा? एडवांसमेंट होता है केवल मोह का। हमें देखना है अपना एडवांसमेंट करना है वैराग्य का, आध्यात्मिक चेतना का, इसमें हमें एडवांसमेंट करना है, ताकि हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तो हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य इस ढंग से होना चाहिए कि किस ढंग से जल्दी जल्दी मुझे इस भौतिक जगत से छुटकारा मिले। यहां बता रहे हैं कि पृथु महाराज ने अपने जीवन की अंतिम अवस्था में देखा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, तो अब मुझे रिटायर होना चाहिए। तो इस कलयुग में हम सभी वृद्ध हैं। वृद्ध की परिभाषा यह है कि मृत्यु के जो करीब हो, तो हम सब मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। तो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं तो हम सब वृद्ध हैं, तो हमारी तुरंत यह योजना होनी चाहिए कि कैसे कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊं। तो इस योजना के साथ ही श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री राम नेता भगवान की जय। तो भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की, तो साथ में हमें शास्त्र दिए। सारे के सारे वैदिक शास्त्रों का ये उद्देश्य है कि किस ढंग से हम इस भौतिक जगत से अपने लिए भौतिक जगत से वैराग्य को उत्पन्न करें। सब शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है। तो उन शास्त्रों के अनुसार हम जीवन को अनुशासित करेंगे तो धीरे धीरे क्रमशः हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा पाएंगे। तो हमारे जीवन शैली इस ढंग से होनी चाहिए। ये नहीं प्लान बनाने चाहिए कि ठीक है अब मैं कैसे और इंद्र तृप्ति करूं और धन कैसे कमाऊं, और इसमें हम उलझने का प्लान बनाते हैं। इस उलझन से निकलने का कोई प्लान हमारे पास नहीं है। तो इस उलझन से निकलने का हमें प्लान बनाना चाहिए। तो इस उलझन से निकलने के लिए ही भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है। चार आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो बोला गया कि अगर व्यक्ति को पहले 25 साल ब्रह्मचार्य आश्रम में बिताने चाहिए और हो सके तो ब्रह्मचार्य ही रहना चाहिए, और क्योंकि ब्रह्मचार्य से सीधा संन्यास और संन्यास पाके सीधा भगवत धाम वापस, ये तो है सीधा सीधा रास्ता। लेकिन किसी बद्ध जीवन में इंद्र तृप्ति की बहुत तीव्र इच्छाएं हैं तो उसको ब्रह्मचार्य से गृहस्थ जीवन, जैसे ब्रह्मचार्य से संन्यास तो सीधा रास्ता है, ब्रह्मचार्य से गृहस्थ जीवन डाइवर्जन हो गया, गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास, तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, डाइवर्जन हुआ है और उस डाइवर्जन में खतरे भी बहुत हैं कि फिर क्या हो गए, हम जाके अपना रास्ता भूल जाते हैं। भागवतम के पांचवें स्कंद में बताया गया कि फैमिली लाइफ इज अ फॉरेस्ट फायर ऑफ एंजॉयमेंट, ये घना जंगल है, तो इन जंगलों में व्यक्ति अपना रास्ता खो बैठता है। तो अक्सर यही हो रहा है कलयुग में कि हम इस रास्ते में खो बैठे हैं, भूल गए कि गृहस्थ आश्रम किस लिए है। जब एक स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं तो उसको वैदिक धर्मों के अनुसार इसको संस्कार माना गया है, अग्नि को बीच में रखकर फेरे लगाते हैं, यानी कि यज्ञ केंद्र में रहता है। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य, तभी उनको बोला जाता है धर्म पति और धर्म पत्नी, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष इकट्ठे हुए हैं धर्म का पालन करने के लिए। लेकिन धर्म तो कहीं होता ही नहीं, स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं केवल अपने कामुक वासनाओं को पूरा करने के लिए। तो हमारा स्वरूप ये नहीं है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, ये तो उपाधियां हैं। इस जन्म में आप पति हैं, पता नहीं अगले जन्म में आप क्या होंगे, मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक डॉग, एक नर कुत्ता, मादा कुत्ते को पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है वहां पर, वो तो केवल एक नर है और एक मादा है और इंद्र तृप्ति है बस। केवल मनुष्य जीवन में धर्म पति धर्म पत्नी का ये कंसेप्ट है कि दोनों मिलकर धर्म का पालन करें। तो ये एक तरह की उपाधि है। तो किसी भी तरह की अगर कोई उपाधि होती है तो उस उपाधि को प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। बहुत ही जगह पे हम देखते हैं कोई पोस्ट प्राप्त करनी है तो कुछ योग्यताएं होती हैं। तो अगर पति और पत्नी अपने आप को कहलाना है तो उसकी भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता क्या है कि दोनों को भगवान का भक्त होना चाहिए, तभी वो धर्म का पालन कर पाएंगे। और दूसरा दोनों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए धर्म के पालन में, तभी वो धर्म पत्नी कहलाएंगी, तभी वो धर्म पति कहलाएंगे। तो इस ढंग से जब वो करेंगे तब उनकी जो संतान उत्पन्न होगी उसको वो सही ढंग से उनको फिर ट्रेन करना चाहिए कि इसको ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाए, क्योंकि जब तक वो ब्रह्मचारी का पालन नहीं करेगा वो गृहस्थ नहीं बनेगा सही। वो उसके लिए जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रजीत ही रहेगा तो विवाह करके केवल इंद्रजीत करेगा तो ग्रह में भी बनेगा। तो ब्रह्मचारी उसको बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि वो अच्छे ढंग से ब्रह्मचारी बने। तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को वो गुरुकुल में भेजें और उनको पूरे ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग दें। लेकिन यहां तो हम देखते हैं कि माता पिता चाहते हैं कि अच्छे कोएड स्कूल में जाएं, शुरू से बिल्कुल पुरुष और स्त्रियों का बच्चों का एकदम फ्री मिंगलिंग रहता है, तो कहां से ब्रह्मचारी का पालन कर पाएगा? ब्रह्मचारी का पालन नहीं होगा तो गृहस्थ आश्रम सब बेकार है, गृहस्थ आश्रम नहीं है तो आगे क्या, पूरा का पूरा वर्णाश्रम धर्म बेकार, बिल्कुल टॉपसी टर्मी सब सिचुएशन होगी। तो तभी किसी को पता है नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, सब भटक रहे हैं इधर उधर। तो ये बहुत ही समाज स्थिति बहुत खराब है। तो जब तक हम सही ढंग से ब्रह्मचारी का पालन नहीं करेंगे, सही ढंग से गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर पाएंगे, तभी हम इसको त्याग करके संन्यास की तरफ बढ़ेंगे। किसी साधारण व्यक्ति से बात करो इस ढंग की कि आप विवाह कर रहे हो और 25 साल के बाद त्यागना पड़ेगा उसके तो प्लान होते हैं मैं गोल्डन जुबली बनाऊंगा, मैरिज एनिवर्सरी की गोल्डन जुबली बनाऊंगा, प्लेटिनम जुबली बनाऊंगा। तो बोले इससे नहीं भगवान ने बनाया है सिस्टम उसके तो क्या क्या प्लान होते हैं, उसको आशीर्वाद भी यही मिलता है, बड़े बड़े यही आशीर्वाद देते हैं कि इकट्ठे रहो, सात सात जन्मों तक इकट्ठे रहो। तो ये क्या है, ये बिल्कुल जो हमारी योजनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की योजनाओं से बिल्कुल अलग विपरीत योजनाएं हैं। तो भगवान की योजनाओं से विपरीत योजना बनाकर कैसे कोई खुश रह सकता है, असंभव है। जब हम भगवान के सारी योजनाएं सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर रहे हैं, जल का प्रयोग कर रहे हैं, वायु का प्रयोग कर रहे हैं हमारी सुविधा के लिए, तो इसीलिए ये विश्वास होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की योजनाओं में। हमें उल्टे सीधे जो मार्केटिंग की कंपनी के लोग हैं उनकी योजनाओं में विश्वास हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ले लो आप खुश हो जाओगे। तो भगवान है जो कि स्वार्थ रहित है, हमारी सेवा कर रहे हैं, उनकी योजना में विश्वास ही नहीं होता। तो कहने वर्णाश्रम का पालन करो सुखी रहोगे, 25 वर्ष इंद्रदेव की थोड़ी सी सुविधा दी गई है, बस 25 वर्ष केवल थोड़ी सी, वो भी आंशिक रूप से, वो भी धर्म के शास्त्रों के अनुसार। उसके बाद त्यागना है, ये हमेशा सोचते रहना कि इसको त्यागना है। तो इसी ढंग से गृहस्थ आश्रम में रहना कि इसको त्यागना है एक दिन, जब तक त्यागेंगे नहीं प्रसन्न नहीं रह सकते, असंभव है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सबसे आदर्श मृत्यु वो है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़े तो उसके परिवार वालों को मालूम ही ना हो कि व्यक्ति जिंदा है कि मर गया। और यहां पे व्यक्ति मरने से पहले सबको बोल के जाता है कि सबको बुला लेना, यहां यहां पे मेरा नाम लिखवा देना, बैंड बाजा बजवाना, पता नहीं क्या क्या, उससे पूछो मरने के बाद क्या देखोगे, किस लिए बोल के जा रहे हो सब ये। इन पुण्य स्मृति में उन्होंने ये पंखे दान किए, ये किया, किस क्या आपको आनंद मिलेगा बताओ, आप तो शरीर में रहे नहीं, इसके फिर कहता मेरा नाम लिखवा के जाना। तो कितनी बड़ी अज्ञानता है ये बताइए। तो सारे के सारे ये भ्रम का जो कारण है अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं सब मेरी है। और व्यक्ति का, एक पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, इतना घनिष्ठ आकर्षण है एक दूसरे के प्रति कि व्यक्ति पागल हो गया है, इस काम ने उसकी बुद्धि को खत्म कर दिया है। पुंसा स्त्री मैथुन भाव मेहता तयो मित्र हृदय ग्रंथ मारो अतः ग्रह शक्ति सुप्ताप्त वित्ते जनस्य मोह अयम अहमाम मेति। कि जो शुरुआत होती है इस भौतिक जगत में हमारे अस्तित्व की, एक पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण, उसके बीच में दोनों में जब विवाह होता है तो जो हृदय की जो ग्रंथि है वो बहुत और ताकतवर हो जाती है। फिर अतः ग्रह क्षत्रिय सुप्ताप्त वित्ते, तब उसको घर चाहिए, कुछ अपनी जमीन चाहिए, कुछ रिश्तेदार चाहिए, फिर कुछ धन चाहिए, फिर पूरा वो हो जाता है कि ये सारा का सारा अंपायर, ये सारा का सारा राज्य मेरा है, मैं और मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये सब मेरा है। क्या है हमारा? कुछ भी नहीं है। इस सारा परिवार मेरे रहना कि ये मैं और मेरा सबसे बड़ा भ्रम है। अभी मैं इस धर्म का स्वामी हूं। देखिए ना, अगर हमारी आयु कोई 40 वर्ष की है तो मेरे, अगर हमारा कोई पुत्र है उसकी आयु मान लीजिए 10 वर्ष की है, तो मैं सोच रहा हूं कि ये मेरा पुत्र है, 10 वर्ष का पुत्र, और मैं 40 वर्ष का। तो आज से अगर हम देखें 20 वर्ष की क्या स्थिति, पहले 20 वर्ष पहले मेरी आयु थी 20 वर्ष, और ये जो पुत्र है जिसकी आयु 10 वर्ष है, ये कहां था? ये कहीं और किसी परिवार का हो सकता, कोई दादा या दादी हो, है ना, उस परिवार से वो संबंधित होगा, उस परिवार से संबंधित हो गया। अपने परिवार का हो सकता कोई दादा दादी हो, और वो आ गया नीचे, फिर हमारा पुत्र बन गया। अब हो सकता है वही व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो, वो श्राद्ध कर रहा हो अपने लिए ही कर रहा हो, पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं ना, हो सकता है पहले इसी परिवार में हो। तो इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, इतने परिवार हम बदल चुके हैं, तो इसका कहना कि मैं और मेरा परिवार, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। वास्तव में मैं कौन हूं? कृष्ण का दास। मेरा क्या है? कृष्ण की सेवा। परिवार क्या है? कृष्ण का परिवार। ये सारा का सारा वासुदेव कुटुंबकम, केवल कृष्ण का परिवार है। ये जो माता पिता हम सोचते हैं कि ये मेरे माता है, ये मेरे भाई, ये सब टेम्परेरी रिलेशनशिप्स हैं। जैसे समुद्र में कुछ जो बबल्स होते हैं, बुलबुले इकट्ठे होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर कुछ बुलबुले इकट्ठे हो गए, अलग हो गए, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस केवल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर अपने अपने कर्मों के अनुसार हम इकट्ठे हुए हैं, तो सबको इकट्ठा मिलकर भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। लोग बोलते हैं किसी से ऐसी बातें करो तो जो परिवार से बहुत आसक्त व्यक्ति होता है बड़ा उदास हो जाता है कि क्या ऐसी ऐसी बातें करो, परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। कई लोग हो सकते हैं सुन के सत्संग में आना ही बंद कर दें कि छोड़ना पड़ेगा। ये शब्द सुनते ही एकदम जैसे कहते हैं कंपन सी चली आती है अंदर, वज्रपात। खासकर स्त्रियों को लगता है कि तभी तो कहते हैं इस कौम में नहीं आना चाहिए, ये खींच लेते हैं, ये छीन लेते हैं, जबरदस्ती संन्यास दिलाएंगे सबको। देखा गया है पति पत्नी दोनों दीक्षित हैं, फिर भी पत्नी असुरक्षित महसूस करती है कि पति छोड़ के ना चला जाए। तो उनसे पूछो, थोड़ा सा हमें बुरा मत मारिए, थोड़ा आप विश्लेषण कीजिए कि पति आपके साथ इतने सालों से रह रहा है, कौन सी सिक्योरिटी मिली आपको, कौन सी सिक्योरिटी मिल गई है? ना आपको मिली है, ना आपके पूर्वजों को मिली है। हमेशा जब भी इकट्ठे रहे हैं तो हमेशा सुखपूर्वक तो रह ही नहीं सकते इस पौधे जगत में। पदम पदम यद विपदम, सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे आपके। जितने मर्जी आप LIC NSE सिक्योरिटी वगैरह कर लो, सब खत्म। पदम पदम यद विपदम। तो जो भगवान के प्लान है कि घर को छोड़ो तब सुखी होगे, तो छोड़ देना चाहिए, और छोड़ के हम असली परिवार में जाएंगे। इस परिवार में जब इकट्ठे बैठ के सिनेमा देख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छे इकट्ठे बड़े खा पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े कितना सुखी परिवार है। और ये सुखी परिवार नहीं है, असली परिवार कृष्ण के साथ है। कृष्ण के साथ नाचना है, कृष्ण के साथ खेलना है, उनके साथ, ये हमारा असली परिवार, उनके साथ लीलाओं में भाग लेना है। ये हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान को आनंद देने के लिए है। तो वो असली परिवार है, वहां पे जाना है। इस झूठे से एक सपने में अपने परिवार को मान के यहीं बैठे रहना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पाना है, इसको हम त्याग कर पा रहे हैं। ये भौतिक जगत एक सपने के समान है, ये एक सपना चल रहा है। तरह तरह के चरित्र हमारे सामने आ रहे हैं, तरह तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, एक सिनेमा है ये बस। तो हमें इस अपने आप को जागृत अवस्था में लाना है। तो अगर जब तक हम इसको त्यागेंगे नहीं, हम सपना हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये सपना रहेगा। तो पत्नी सोच रही है कि पत्नी मुझे रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा, तो सपना है, बहुत बड़ा भ्रम है। अब समझ लीजिए सपने में किसी ने कोई बुरा सपना देख रहा है कि उसके ऊपर से ट्रेन निकल कर जा रही है, और वो बहुत कांप रहा है सपना देखते हुए, तो उसकी आप कैसे मदद कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि सपने में उसको देख रहा है कि एक ट्रेन उसके ऊपर से जा रही है, तो आप उसके सपने के अंदर प्रवेश करके गाड़ी में ब्रेक लगा दो, और फिर वो देखे हाँ अब मैं सपने में ट्रेन मेरे ऊपर से नहीं जा रही तो ठीक हो जाएगा। ऐसा करना ठीक है क्या कि आप उसके सपने के अंदर प्रवेश कर जाओ? वो हम कर नहीं सकते, सो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको जोर से जगाओ, नहीं जगाओ तो थप्पड़ मारो, पानी डालो, उठाओ, क्यों क्या घबराहट हो रही, उठो उठो। तो जैसे उठेगा हाँ सब ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने का क्या प्रयास कर रहा है, उसी चीज के बराबर है कि उसके सपने के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। तो कितनी बड़ी मूर्खता है, सबसे अच्छी उसकी मदद क्या होगी, उसको जोर से हटाओ, उठा दो। तो जब उठा देंगे, जो बुद्धिमान जिसकी नींद कम है, कच्ची नींद है, वो तो तुरंत उठ जाएगा, और जो बहुत ही गहरी नींद में है उसको कई बार जोर से हिलाना पड़ता है। तो जोर से हिलाना पड़ेगा, तो इसीलिए कई बार साधुओं के शब्द से सख्त शब्द सुनने पड़ते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि बिल्कुल हिला देना चाहिए व्यक्ति को, जब वो हिलेगा नहीं तब तक उसका वो जो भ्रम है टूटेगा नहीं, खूब जोर से हिला देना चाहिए, तब उसको समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसलिए उसको उठाएंगे तभी वो जानेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अन्यथा ये बहुत ही जगत बहुत बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि यहां पे आनंद है, इस भौतिक जगत में किसी भी तरीके से हम सुख नहीं पा सकते, केवल एक ही तरीका इस भौतिक जगत में सुख पा के कि हम इससे अपने आप को वैराग्य ले लें, इसको त्याग दें। ओनली बाय डिटैचमेंट वी कैन गेट हैप्पीनेस, इससे अटैच होकर हम कभी भी सुख नहीं पा सकते। श्री प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं कि कैसे भौतिक जगत झूठे प्रॉमिस करता है, कैसे झूठे प्रॉमिस करता है, कि एक बार श्री प्रभुपाद अमेरिका में जा रहे थे न्यू वृंदावन में, तो उनको रास्ते में कई जगह सड़क पे कांप होते हुए टकरा था, तो काफी ट्रैफिक जाम था, तो जो सड़क पे जो रिपेयर चल रही थी उन्होंने लिखा हुआ था टेम्परेरी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। तो प्रभुपाद कहते थे लेक्चर में आके यही है, ये माया है कि बस थोड़ा सा कष्ट सह लो, परमानेंट कन्वीनियंस मिलेगी मिलेगी, थोड़ा सा कष्ट सह लो ना। तो व्यक्ति थोड़ा सा थोड़ा कष्ट सहते सहते जीवन त्याग देता है, शरीर त्याग देता है, थोड़ा सा कष्ट सह लो, थोड़ा सा कष्ट बस, आगे बहुत खुशी मिलेगी, थोड़ा सा कष्ट। देखिए बचपन से थोड़ा थोड़ा कष्ट हो जाता है, बेचारे बच्चे को मार पीट करके स्कूल भेजा था, थोड़ा सा कष्ट सह लो आपके लिए अच्छा है, फिर स्कूल जाने की शुरू हो जाते हैं, फिर बोले थोड़ा और कष्ट सह लो, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बन जाओ, बहुत आनंद मिलेगा। बेचारा फिर कष्ट उठा के इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, थोड़ा कष्ट और सह लो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, प्रमोशन मिल जाएगी, धन ज्यादा मिलेगा, 3-4 क्लिनिकों में जाओ, बड़े बड़े पॉलीक्लिनिक खोलो, थोड़ा कष्ट सहो, थोड़ा और कष्ट सहते हैं फिर भी वो आनंद नहीं मिलता। तो ये टेम्परेरी इनकन्वीनियंस जो है एटर्नली इनकन्वीनियंट है, दिस इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू स्टे, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे 1927 में कह रहे हैं वो, तो ये हमारे लिए जगह नहीं है। जितना ज्यादा हम परिवार से आसक्त होंगे उतना ज्यादा हमारे वो दुख का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवतम ने 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी जैस अलग अलग गुरुओं की चर्चा करते हैं, तो बोलते हैं किस तरह से उन्होंने कबूतर से शिक्षा ली। तो उदाहरण देते हैं कि कबूतर के परिवार का, कि एक कबूतर था और उसके साथ एक कबूतरी थी, दोनों में बहुत अच्छा संबंध था, बहुत ही प्रेम से रहते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, बहुत ही रोमांटिक अफेयर चल रहा था दोनों का। जो पत्नी थी, जो कबूतरी थी, अपनी मीठी मीठी बातों से उनको फुसलाती थी, बहलाती थी, और जितनी भी मांगे थी वो अपने सामने रखती थी, और कबूतर सोचता था कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, वो सारी उसकी मांगों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करता था, और बिल्कुल अजितेंद्रिय बिल्कुल उसका गुलाम बना हुआ था। तो इस ढंग से उनका बहुत ही रोमांटिक अफेयर चल रहा था, हैप्पी फैमिली, और एक सुंदर सा उनका घोंसला था, और चलते चलते फिर क्या हुआ कि कबूतरी गर्भवती हो गई, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और फिर कबूतर के सामने ही कबूतरी ने कई अंडे दिए, तो उन अंडों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे अंडे हैं, और फिर धीरे धीरे उन अंडों से चूजे निकले, तो जब वो अंडे से चूजे निकल रहे थे तो इतने प्रसन्न हो गए कि देखो हमारी परिवार है, तो फिर उन चूजों को देखते थे, बेचारे छोटे छोटे चीं चीं चू करते थे, तो उनकी आवाज सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे वो, और फिर उनके धीरे धीरे पंख निकलने लगे, और जब पंख उड़ने के बाद उड़ने का प्रयास करते थे, उड़ते थे बिगड़ते थे, सिर्फ उन्हें मुस्कुराते थे, हंसते थे, कितना अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही सुंदर परिवार चल रहा था। तो हैप्पी फैमिली, बच्चे हैं, पति पत्नी में अच्छा संबंध है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो फिर अब उनका कर्तव्य बन गया कि अब बच्चे ज्यादा हो गए हैं तो अब खाना लाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले केवल पति जाते थे बाहर खाना लाने के लिए, अब पति भी निकलने लगे, दोनों पति कबूतर और कबूतरी उड़ गए हैं कि अब जाके हम बच्चों के लिए खाना लेके आएंगे। तो एक बार जब खाना लेने के लिए चले गए तो छोटे छोटे चूजे बेचारे अकेले थे, तो एक शिकारी आया। शिकारी ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, शिकारी ने उनके ऊपर जाल डाल दिया। तब जब दोनों वापिस आए तो देखा हमारे बच्चों के ऊपर जाल डाल दिया गया है। तो पत्नी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे क्या हो गया, क्या हो गया, किसने पकड़ा तुम्हें, बिना सोचे समझे वो भी एकदम शिकारी के जाल में चले गए। तो देखा उस कबूतर ने कि उसके बच्चे, उसकी पत्नी, प्रिय पत्नी जिसके साथ इतना अच्छा उसने समय बिताया, सबके सब शिकारी के जाल में आ गए हैं। तो वो भी बहुत जोर जोर से विलाप करने लगा कि सारा जीवन मेरा बर्बाद हो गया, क्या किया मैंने, मैं इनको कुछ भी आनंद नहीं दे पाया। तो रोते हुए बिलखते हुए अपने आप को उसने भी शिकारी के जाल में डाल दिया। तो शिकारी आया, पूरे के पूरे परिवार को समेट कर ले गया। तो ये पूरी कहानी वो दत्तात्रेय जी कहते हैं हमारे लिए है। यही हमारे साथ होता है कि युवा युवती को देखता है, मिलते हैं तो सुन लगता है कि बस इससे कुछ सुंदर जीवन है ही नहीं, और फिर संतान की उत्पत्ति, फिर उनसे आसक्ति, और फिर क्या होता है, काल आता है और काल सब कुछ ले जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो इस भौतिक ब्रह्मांड में बिल्कुल काल के मुंह के अंदर हम पड़े हैं और धीरे 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 काल हमें खा रहा है। तो जब काल हमें खा रहा है धीरे धीरे, तो अपने आप ही हमारी इंद्र तृप्ति की रुचि समाप्त हो जानी चाहिए। जो स्त्री हमें बहुत अभी सुंदर दिखाई देती है, कुछ सालों के बाद हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। बड़े बड़े विश्व सुंदरियां, अब उनकी क्या हालत हमारे होगी। तो ये सारी की सारी यहाँ की सुंदरता, सारे की सारी यहाँ के ऐश्वर्य सब समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। अगर इसी बात पे हम मनन करें तो हमारी इंद्र तृप्ति की रुचि अपने आप समाप्त हो जाएगी। और फिर हमें केंद्रित होना चाहिए अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है, यम प्राप्य मानुषम लोकम मोक्ष द्वारम अपावृतम। यम प्राप्य मानुषम लोके, जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुले हैं। ग्रहेशु खगवत सकता, लेकिन वो घर में खगवत इस कबूतर की तरह सकता, बहुत ही ज्यादा आसक्त हो गया, तो क्या होगा, तम आरूढ़ चुतहवितो, कि वो इतना ऊंचा पहुंच के भी नीचे गिर जाएगा। कि मनुष्य देह प्राप्त कर लिया जिससे कि मोक्ष का द्वार खुला है, इतनी ऊंचाई पर पहुंच के भी अगर घर गृहस्थी के जीवन में वो आसक्त रहा तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, ऊंचा पहुंच के भी फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो इस मनुष्य देह का उपयोग हमें करना चाहिए केवल भगवत धाम जाने के लिए। और ये जो आसक्ति है ये इतनी ज्यादा हमारे अंदर है, डीप रूटेड है, कि ऐसा नहीं कि केवल जो गृहस्थ में रह रहे हैं, जो विवाहित जीवन जी रहे हैं उनके अंदर ये आसक्ति है। जो निवृत्ति मार्ग पे भी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचार्य या संन्यास व्रत का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें भी आसक्ति बहुत ज्यादा रहती है। छोटी छोटी बात पर आसक्ति हो जाती है। जैसे कि उदाहरण मिलता है शास्त्रों में कि दो राजा थे, एक का नाम था गोपीचंद, एक का नाम था बृहतहरि। तो दोनों में बहुत वैराग्य उत्पन्न हो गया संसार, दुखी संसार को देखकर। तो दोनों ने सब कुछ त्याग दिया और जंगल में भटकने लगे। तो भटकते भटकते एक बारी क्या हुआ, एक नदी के किनारे पहुंचे। तो पहले राजा बृहतहरि आए, तो उन्होंने देखा कि नदी में स्नान कर लो, तो उनके पास जो थैला था कपड़ों का वो वृक्ष की एक टहनी पर लटका दिया और स्नान करने चले गए। उसके बाद दूसरे राजा आए गोपीचंद, वो भी भटकते भटकते आए, बोला ठीक है मैं भी स्नान कर लेता हूँ। तो उन्होंने भी उसी टहनी पे वो थैला लटका दिया। तो जब बृहतहरि जी ने भी लटका दिया, गोपीचंद ने भी लटका दिया, जब दोनों राजा बाहर आए तो जिन्होंने पहले लटकाया था बृहतहरि जी ने, तो उनसे दूसरे राजा से लड़ाई करने लगे कि तुमने मेरी टहनी पे थैला क्यों लटकाया। तो बोले भी तुम्हारी टहनी थोड़ी है, ये तो वृक्ष की टहनी है, मैं भी थैला लटका सकता हूं। कि तुमने देखा नहीं पहले मेरा थैला लटका हुआ है। दोनों राजा थे, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन टहनी से आ सकती होगी, मैंने पहले इस पे थैला लटकाया है। तो दोनों में खूब लड़ाई होने लगी कि आपको देखना चाहिए, बोले कैसकी टहनी। तभी वहां से एक बूढ़ी महिला जा रही थी, और इससे हम अपना निर्णय करवाते हैं। तो दोनों लड़ते हुए गए कि ऐसा ऐसा हो गया। तो बूढ़ी महिला ने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, कितनी छोटी बात पे लड़ रहे हो। देखो उन राजाओं को, भर्तहरि और गोपीचंद को, सब कुछ त्याग करके वंदे मातरम कर रहे हैं और तुम हो कि एक छोटी सी टहनी के लिए लड़ रहे हो कि मैंने इस पे थैला लटकाया, उसने थैला लटकाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो दोनों ने जब ये बात सुनी तो बिना कुछ कहे दोनों भाग रहे तो उस बूढ़ी महिला ने नहीं पहचाना था कि ये वही राजा नहीं। तो इसी ढंग से क्या होता है कि हम भी सब कुछ त्याग देते हैं, तो यहां आकर भी हमारे में छोटी छोटी बातों में आसक्ति रहती है कि मैं यहां पे रहता हूं, मैं यहां बैठता हूं, मैं यहां सोता हूं, ये मेरा बिस्तर है, ये छोटे छोटे बातों में हमारी आसक्ति रहती है। या फिर हमें आसक्ति हो जाती है पूजा लाभ प्रतिष्ठा से कि अब मुझे मान मिलना चाहिए, मैं बहुत बड़ा त्यागी हो गया, मेरा गुणगान होना चाहिए, और मेरे गुणगान में थोड़ी सी भी कमी आए तो मेरे क्रोध हो जाता है, केवल मेरा होना चाहिए और किसका गुणगान मेरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें आसक्त हो जाते हैं। तो यही जो आसक्ति है ये हमारे बार बार भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का कारण बन रही है। इससे हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा कि अपनी प्रगति हम चेक करें कि कितना अपने आप को डिसएंटेंगल किया हमने। जब रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए रामकेली में, और वहां से जब मिलके आए तो उनकी बिल्कुल भी अब रुचि नहीं हो रही थी कि राज्य को संभाला जाए। तो जल्दी से जल्दी, वो प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, इससे वो इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि राजा उनको छोड़ेगा नहीं, तो कैसे उससे मुक्ति पाई जाए। तो मुक्ति पाने के लिए, इस सरकारी ओहदों से मुक्ति पाने के लिए दोनों भाइयों ने यज्ञ किया। कभी आप तक सुना इतिहास में आपने, लोग तरह तरह के यज्ञ करते हैं कि हमारे को धन की प्राप्ति हो, पोजीशन की प्राप्ति हो। यहां दो भाई हैं, इन्होंने यज्ञ इसलिए किया कि इस ऊंची पोस्ट से हमें मुक्ति मिले। तो उन्होंने अच्छे ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण मंत्र के द्वारा यज्ञ किया, और इस यज्ञ का फल यह हुआ, जैसे ही रूप गोस्वामी जी ने दोबारा से इस्तीफे के लिए अप्लाई किया तो रूप गोस्वामी जी को तुरंत राजा ने आज्ञा दे दी। तो इससे हमें सीखना है कि ऊंचे ओहदे से और हमारे को अच्छा धन मिल रहा है, अच्छा व्यवसाय चल रहा है, सुंदर परिवार है, सुंदर पत्नी है, इससे में आसक्त नहीं होना है, इसको त्यागना है। श्रील भक्ति मोहन ठाकुर कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है एक स्कूल के समान है। तो स्कूल का क्या अर्थ होता है कि मैं स्कूल में प्रगति कर रहा हूं, क्या मतलब होता है स्कूल में प्रगति करने का? स्कूल में हम प्रगति कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, तो उसके बाद क्या, अगली कक्षा में गए, अगली कक्षा में, उसका मतलब क्या होता है फिर? हाँ, कि प्रगति करते करते एक दिन स्कूल आप छोड़ देंगे, ये नहीं कि स्कूल में ही बैठे रहेंगे कि स्कूल इतना अच्छा लगा स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये भौतिक जो ये हमारा गृहस्थ आश्रम है ये स्कूल के समान है, इसमें पढ़ाई मतलब कि अपने आप को शुद्ध करना है और छोड़ देना है, और ऐसा नहीं करेंगे तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, साधु मन ने असुवीर देना सदा समुद्गिन धीयम असत करा हित्वा आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनोंगतो यत श्री हरि माश्रय। कि ये असुरों में श्रेष्ठ, कि ये जो भौतिक जगत है ये सदा समुद्गिन, हमेशा चिंताओं से भरा हुआ है। हित्वा आत्मपातम, ये हमारे आत्मा के पतन का कारण है। ग्रहम अंधकूपम, ये जो घर का जीवन है अंधे कुएं के समान है। तो इसको क्या करना है, वनम गतो या श्री हरि माश्रय, वन में चले जाना है और भगवान श्री हरि की आश्रय ग्रहण करनी है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम सब कुछ त्याग कर वन की तरफ नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा, सदा समुद्गिन, हमेशा चिंताओं से ग्रसित रहेंगे। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जो लोग इस ग्रह जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं उनकी स्थिति वैसे ही है जैसे वो रेशम का कीड़ा होते हैं, सिल्कवॉर्म, वो अपना ही जाल बुनता है और उसी के अंदर घुट के मर जाता है। तो हम लोग अपना ही जाल बुनेंगे और इसी में घुटकर हम मर जाएंगे। भागवतम के पांचवें स्कंद में बताया गया है कि अगर ये जो एक व्यक्ति है जो परिवार में रहता है उसके सगे संबंधी किसकी तरह हैं, टाइगर्स एंड जैकल्स, शेर की तरह है और भेड़ी और गीदड़ की तरह है, जो सबके सब उसका धन लूट लेंगे। तो हम पूरा धन कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा धन लूट लिया जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम रिटायर का खुद प्लान बनाएं, उस धन को बांट दें और हम निकल पड़े। एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, उन्होंने बिल्कुल टाइम से रिटायरमेंट ले लिया। तो उन्होंने पूछा गया उनसे कि आपने क्या है जल्दी क्या थी रिटायरमेंट की, यू आर गोइंग सो वेन। बोले जब रिटायरमेंट लें तो लोगों को ये नहीं पूछना चाहिए वेन, दे शुड आस्क वाई ना, कि जब समय ठीक हो तुरंत हमें निकल जाना चाहिए। प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि लोग धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं। नहीं तो बताया गया तीसरे स्कंद में एक बूढ़े व्यक्ति को कैसे देखा जाता है घर में, कोई बूढ़ा बैल जिसका कोई उपयोग ही नहीं है और सब के सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये शरीर त्यागेगा। क्या स्थिति है, इतनी आसक्ति है। वो उसके परिवार के जन कह रहे हैं कि कब मरेगा, और वो कह रहे हैं नहीं 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 कुछ घंटे और जी लूं, इसका मुंह देखूं, ये कर लूं, क्या फायदा। तो निश्चित रूप से हमें ये प्रयास करना चाहिए, और जितनी ज्यादा हम आसक्ति रखेंगे, प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि मनुष्य समाज में के इतिहास में ना तो कभी ऐसा हुआ था और ना कभी होगा कि परिवार में आसक्ति रख के किसी ने जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लिया हो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कैसे होगा छुटकारा, केवल कृष्ण की भक्ति करके ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, बताते हैं कि जिस ढंग से जो बुद्धिमान ग्रस्त किसको माना जाता है, जो प्रत्येक बात बहुत सोच समझ कर करे, अपने एक एक धन को सोच समझ कर वो व्यय करे कि इससे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, तो वो जब एक पैसे को खर्चने में इतना बुद्धि का प्रयोग करता है, तो अपनी बुद्धि का असली प्रयोग करके ये देखना चाहिए कि जो असली धन है उसका मनुष्य देह, उसको क्यों व्यर्थ गंवा रहा है। जो इस पैसे को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, लेकिन जो हमारा असली हमें धन प्राप्त हुआ, उपहार प्राप्त हुआ है कृष्ण के द्वारा, ये मनुष्य देह, उसको क्यों व्यर्थ वो गंवा रहा है। तो हमारे लोग, हम लोग इतना ज्यादा भौतिक प्रकृति के द्वारा सताए गए हैं, तीन तापों से सताए गए हैं, फिर भी इस जगत से छुटकारा प्राप्त करने की कोई रुचि उत्पन्न नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है हमारी कि भगवत धाम वापस जाना है, कोई प्लानिंग नहीं है। सारे के सारे प्लान यही है कि कैसे इसी भौतिक जगत को सुखी बनाया जाए। कितने बड़ा भ्रम है ये बताए, सपने में ही हम जीवन जी रहे हैं। तो असली ज्ञान का लाभ तभी है जब इसको विज्ञान बनाया जाए। प्रभुपाद जी बार बार हमें क्यों समझा रहे हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, मनुष्य देह दूसरी योनियों से श्रेष्ठ है। ये सब बातें इसीलिए बता रहे हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, चाहे हम पुरुष की देह में हैं चाहे स्त्री की देह में, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें मिलकर भगवत भक्ति करनी है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और कैसे हम इससे अपने आप को अनासक्त कर सकते हैं, इसका केवल एक ही तरीका है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी योग्यताएं हैं, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी धन है, उस सबको हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। पूरे परिवार को भी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, पूरे धन और ऐश्वर्य को भी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। भागवतम के 11 स्कंद में बताया गया है जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें सत और असत, आनंद और चिंता के बीच में अंतर नहीं मालूम चलेगा। जब तक हम हर वस्तु को भगवान और भक्तों की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हमें आत्मा और शरीर के अंतर का बोध नहीं होगा, सत और असत के बीच के अंतर का ज्ञान नहीं होगा। तब तक हमें यह नहीं मन चलेगा कि असली आनंद क्या है और एक झूठा आनंद क्या है। तो ये सारी बातें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हैं। तो ये केवल चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्या का विषय है कि वास्तव में हमें प्लान्स बनाने चाहिए कि कैसे छुटकारा पाना है, कैसे फंसना है, इसके लिए प्लान्स नहीं बनाने, कैसे छुटकारा पाना है। तो अगर हमारा ये जीवन का लक्ष्य कैसे छुटकारा पाना है, तो हमारा विजन बहुत ब्रॉड हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में, चुटमुट चुटपुट बातों में अपना एनर्जी नहीं गंवाएंगे कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, ये सब बेकार की बातें हैं। इससे हमें अपने आप को ऊपर उठना पड़ेगा कि मेरे इन कार्यों से मैं फंस रहा हूं कि निकल रहा हूं, तो भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं कि नीचे जा रहा हूं। तो इस तरह का हमें विजन लेके चलना है और सबको उत्साहित करना है कि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल भी इसमें डरने की बात नहीं है कि परिवार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा एक भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो तपोवन रहे नहीं, तो कहां जाएंगे हम सब? तपोवन तो रहे नहीं, तो केवल एक ही तपोवन है, वृंदावन। तो प्लान बना लेना चाहिए। काफी लोग ऐसा देखे हैं कि वृंदावन में प्लान बना के रखे हैं, ठीक है, वहां पे उन्होंने मकान लेके रख लिया कि वहां जाके रहेंगे, ये अच्छी बात है, ऐसा भी कर लेना चाहिए। लेकिन केवल मकान बनाने से तैयारी नहीं हो जाएगी, अपनी चेतना को भी विकसित करना पड़ेगा। वृंदावन में काफी लोगों ने फ्लैट्स लेके खरीदे हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने किराए पे दे दिए हैं या किसी और को चढ़ा दिया है, क्योंकि योग्यता नहीं है उनकी वहां की ओर रह सके। केवल मकान खरीदने से इस लोग अगर धन होना चाहिए तो आप वृंदावन में चले जाएंगे, नहीं। केवल मकान खरीदने से आपकी प्लानिंग नहीं चल रही है, वो तो केवल एक हिस्सा है प्लानिंग का। असली प्लानिंग है अपनी चेतना को विकसित करना। आपने मकान ले भी लिया वृंदावन में, लेकिन वृद्ध अवस्था तक आते आते आप इतने आसक्त हो जाएंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी आप छोड़ के जाएं। मुख्य बात यह है कि अपने आप को अनासक्त करो, प्लानिंग शुरू कर दें कि बस ये सब बातें टेम्परेरी हैं, और कैसे होते ही 40 का होते ही या 45 का होते ही छोड़ देना है। ये नहीं करना प्रभु 50 का हूं अभी, 55 का होने दो, 60 में जाऊंगा, नहीं। क्योंकि कलयुग में आयु का पता ही नहीं कब समाप्त हो जाएगी, कब कुछ पता ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके करें, और हम वृंदावन नहीं जा सकते तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमारे मंदिर वैकुंठ के समान है। तो जो वृद्ध लोग वृंदावन नहीं जा सकते उनको निश्चित रूप से मंदिर में आ जाना चाहिए, और मंदिर में आके अब पूरी की पूरी सेवा करनी चाहिए। समय बहुत कम रह गया है, इस कम समय में अब तो चलो जो लोग अभी युवावस्था में हैं तो थोड़ा सा भ्रम है कि शायद मैं 60-70 साल जी जाऊं, लेकिन जो ऑलरेडी 60-70 साल रहे और उनको क्या भ्रम है? अभी और क्या भ्रम रह गया बताइए? बहुत कम आप काउंट करेंगे इस जगत में कितने लोग 80-90 साल की आयु के बाद शरीर त्याग रहे हैं, बहुत कम। अधिकतर लोग 60 या 70 के बीच में जा रहे हैं। तो जो ऑलरेडी 55-60 तक पहुंच गए हैं, अब किस चीज का भ्रम है? युवाओं को थोड़ा बहुत भ्रम हो सकता है कि अभी मैंने बहुत कुछ करना है, वो भी मालूम नहीं कभी शरीर समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान जिनको 60-70 तक पहुंच गया उनके बाद धन्यवाद होना चाहिए, देना चाहिए भगवान को कि यहां तक पहुंचा दिया, इसका मतलब कि अब मैं प्लानिंग सही सही कर लूंगा, अब जितना समय बचा है केवल भगवान की सेवा और कुछ नहीं, बहुत हो गया। घर में रहोगे तो बुरा मत मानिए क्या करना पड़ेगा, पोतों की देखभाल करनी पड़ेगी। वी लाइक ए वॉच डॉग कि हम जा रहे हैं, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, घर की रक्षा करो।
अब ये भ्रम है जी, की भ्रम है, ये भ्रम पैदा हो गया कि हमारे में भ्रम है।
वॉच डॉग का रोल प्ले करना पड़ेगा कि बैठे रहो घर में, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बच्चों को पालो और नौकरानी आई उसे घर की सफाई करवा लो, चुपचाप बैठ के टीवी देखते रहो, बस ये हमारा कार्य है, बदले में आपको कुछ खाना मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए बेचारा वो बैठा रहता है बूढ़ा व्यक्ति कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। इतने लोग बूढ़े व्यक्ति को बोलते हैं आया करो आप मंदिर में, वो तो समय नहीं है। बोले क्या समय नहीं है, क्या करना होता है मुझे, मैंने पोतों की देखभाल करनी है, बहुत जिम्मेवारी है, मैंने अपने बच्चों की देखभाल करनी है, पोतों की देखभाल करनी है,
तो उनके बच्चों को वो देखना है।
क्या ये तो ये अचानक उनके अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, जिस ढंग से अपने युवावस्था को बिताया है उसी तरह से हमारी इच्छाएं उत्पन्न होंगी ना। तो अभी से हमें जो परिवार में हम रह रहे हैं तो इस ढंग से जीना है कि केवल ड्यूटी, ये केवल ड्यूटी की तरह जीना है, और जो आसक्ति है वो होनी चाहिए कृष्ण के साथ और कृष्ण के भक्तों के साथ, अटैचमेंट उनसे डेवलप करना है। तो अटैचमेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं? अगर हम अपनी पत्नी के साथ अटैचमेंट है तो पत्नी के लिए हम नए नए उपहार लाते हैं, उनको साड़ियां खरीद कर देंगे, आभूषण देंगे, तो आसक्ति और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, और गहरी होती जाती है, देखो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं, तो आसक्ति बढ़ती जाती है। अगर इसी आसक्ति को भगवान की तरफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे उपहार किसको देने पड़ेंगे? भगवान को देने पड़ेंगे। तो भगवान और भक्तों को जब देंगे बुरा मत नहीं कोई। और जो घर की स्त्रियां हैं वो भी पत्नी को, वो पति को रिटर्न में क्या देते हैं? पति के लिए अच्छा खाना बनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो फिर इनको ये सेवा और ये खाना किसके लिए करना होगा? तो दोनों के जीवन का लक्ष्य जब कृष्ण होंगे तो अपने आप अनासक्त हो जाएंगे, दोनों के दोनों अनासक्त होंगे, फिर दोनों इकट्ठे जा पाएंगे वृंदावन में या मंदिर में, इकट्ठे जाके तपोवन में तपस्या करेंगे। लेकिन अगर इंद्रदीप्ति जीवन का लक्ष्य रहा तो फिर तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होंगी कि मैं घर में रहूंगा, मैंने और कुछ देखना है, तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। उस स्थिति में जब हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, बहुत दर्दनाक स्थिति है। इसमें कथा याद आती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जब शरीर छोड़ने लगा था तो बिल्कुल घबराया हुआ, एकदम घबराया हुआ, बोल रहा है, सबको पकड़ रहा है, सब घर वाले आसपास खड़े हैं, बोल रहे हैं वो बड़ा बेटा कहाँ है, बड़ा बेटा कहाँ है, बोले ये खड़ा, ये खड़ा, ये सामने देखो बाबा जी, वो सामने खड़ा, अच्छा अच्छा वो छोटा बेटा कहाँ है, बोले वो देखो बाबा जी यहाँ खड़ा है, बहू कहाँ है, बड़ी वो यहाँ खड़ी है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, छोटे लड़की कहाँ है, ये सारे सारे यहीं खड़े हैं, बोले सबके सब मूर्ख हो, क्या हो गया, बोले सब यहाँ खड़े हो, दुकान में कौन बैठा है। इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम समय में वो दुकान के बारे में सोच रहा है। तो क्या होगा जब शरीर छोड़ेगा, दुकान में जाके चूहा बनेगा या कॉकरोच बनेगा। तो ये जानना पड़ेगा हमें कि मनुष्य देह इसलिए नहीं मिला, हमें आसक्ति डेवलप करनी है भक्तों के साथ, भगवान के साथ, और इसमें आनंद का रास्ता है। सुसुखम कर्तुम अप्ययम, बड़ी आसानी से हम इसको त्याग सकते हैं, शुरू से हमें अपने आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए या ब्रह्मचारी आश्रम में भी रहते हुए हम अपने जीवन को शास्त्रों के आदेशों के अनुसार, गुरु के आदेशों के अनुसार स्ट्रिक्टली चलाएं, स्ट्रिक्टली। तो उससे क्या होगा, हम आसक्त नहीं होंगे, हम हर कार्य कर्तव्य के रूप में करेंगे, ड्यूटी के रूप में करेंगे, और कहां ही अपने अपने मन के हिसाब से कोई कार्य किया तो हम आसक्त हो जाएंगे। तो अभी से अपने आपको ट्रेनिंग देना शुरू करें, जीवन बहुत दुर्लभ है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो अभी से ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए कि कैसे मेरे को इस मुक्ति पानी है, फंसना नहीं है, बहुत हो गया, कई जन्मों में फंसा हूं, और सारे उदाहरण मेरे सामने हैं कि जो इस चक्कर में फंसे हुए हैं वो बहुत ही दुखदायी तरीके से शरीर छोड़ते हैं। तो इस चीज से हमें डरना नहीं चाहिए कि अंत में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, डर, इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी योजना यही है, कृष्ण की भी यही योजना है। तो इसी ढंग से महाराजा पृथु ने बताया कि उदाहरण बताया, अपने जीवन के आदर्श से सिखाया कि जीवन का यापन कैसे करना चाहिए, और रिटायर होके बताया कि रिटायरमेंट कैसे लेनी चाहिए। उसी ढंग से हमको भी उनके जीवन से सीख के अपने रिटायरमेंट प्लान बना लेना चाहिए। रिटायरमेंट प्लान ये नहीं है कि हम LIC की पेंशन स्कीम ले लें, है ना, रिटायरमेंट प्लान ये है कि कैसे अनासक्त होना शुरू हो, ये है रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नहीं बात है, ये तो यही हमारे सारे दुखों का कारण है कि हम गुरु को दिव्य नहीं समझते, केवल अपने आप को विशेष समझते हैं बस। बहुत ही जगत में हर व्यक्ति समझता है कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, मैं VIP हूं, बाकी सब बेकार है। तो इसी चक्कर में हम फंसे हुए हैं। तो बुद्धि के स्तर पे आके जाने का प्रयास करना है कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं और गुरु विशेष व्यक्ति है, गुरु साधारण पुरुष नहीं है, तो उनकी आगे का पालन करना ही करना, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। बुद्धि के साथ तो इस बात को समझ ही सकते हैं और धीरे धीरे इसको अप्लाई करें।
कभी नहीं हो सकता
कोई गृहस्थ आश्रम में आसक्ति रख के भगवान धाम प्रभु जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कई बार लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा धन अर्जन कर लूं और सारे के सारे धन को भगवान के चरणों में अर्पण करके सेवा करता रहूंगा, तो ये कहां तक ठीक है। देखिए, ये कई बार हमारा मन हमें आर्गुमेंट दे रहा होता है ना, कि धन अर्जन करो फिर भगवान की सेवा करो, तो उस चक्कर में हम पाथ से भटक जाते हैं। भगवान ने गीता में बोला है, मन मना भव भक्तो, भगवान को हमारा मन चाहिए, हमारी मनी नहीं चाहिए। भगवान के पास धन की कमी नहीं है, इस्कॉन के पास धन की कमी नहीं है। गुरु को आपका धन नहीं चाहिए, गुरु को आपकी चेतना चाहिए। तो इस चक्कर में कि मैं धन कमाने में लग जाऊं, भगवान के लिए तो कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं? अब तो ये हो गया, जो भौतिकवादी व्यक्ति बोलता है कि अपने परिवार वालों के लिए किसके लिए कमा रहा हूं, आपके लिए कमा रहा हूं। अब यहां चुनने के बाद व्यक्ति बोलता है सारा किसके लिए कर रहा हूं, कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूं। तो अपने आप को धोखा देना है, जितना गुरु बोले उतना ही करना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं कि मैं बिजनेस को बढ़ा रहा हूं कृष्ण की सेवा के लिए। आपको कुछ नहीं करना, जो आपको गुरु से पूछ के करिए कितना बढ़ाना आपके बिजनेस को, कितना अपने आप को बिजी रखना है, क्यों ऐसा ना हो कि हमारी चेतना ही दूषित हो जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा,
जो प्रचार का कार्य होगा वो बगैर पैसे के
नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि धन कमाना नहीं चाहिए, बिल्कुल धन कमाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा अपने हिसाब से हम सोच लें कि मुझे बिजनेस को खूब बढ़ाना है, खूब धन कमा के मैं गुरु की सेवा करूंगा। गुरु की सेवा गुरु के आदेशों के अनुसार होगी ना, वो आपको बताएंगे कि कितना कितने हद तक आपको बिजनेस बढ़ाना है। आप इतने व्यस्त हो जाओ कि आप भक्तों का संग छूट रहा है आपसे, माला सही ढंग से नहीं हो रही, तो फिर ऐसे धन का कोई लाभ नहीं।
जैसे आपने बताया एक परिवार में एक वृद्ध पुरुष है और उनका एक जवान पुत्र है और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कौन से जुड़ा हुआ है, तो क्या वो अपने पिता को छोड़ के पूरी तरह से संन्यास ले ले या कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाए अपनी ड्यूटी छोड़ दे के?
देखिए ये सब हम लाते हैं क्वेश्चंस कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो, ये सब बहाने हैं ना। आप शुरू तो कीजिए, आप शुरू कीजिए, भगवान आप सबकी रक्षा करेंगे। हमारे सामने उदाहरण है कि भगवान कपिल देव जी से पहले कर्दम मुनि छोड़ के चले गए थे, तो माता देवती अकेली थी, तो कपिल देव जी ने उनको अकेला छोड़ के चले गए थे ना। चैतन्य महाप्रभु की विधवा माँ थी, युवा पत्नी थी, सच्ची माता, उनको छोड़ के चले गए, लेकिन बाद में पूरा ख्याल भी रखा उनका। तो ये सब हमारी कमजोरियां, हृदय की दुर्बलता है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो। आप अपने पथ पे अग्रसर रहिए, धर्म के पथ पे अग्रसर रहिए। हम अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये सब बेकार के हमारे सोच है, अपने आप को हम तैयार करें, समय आने पे सब ठीक होगा। ठीक है
ये प्रभु जी, जैसे आपने बताई मनुष्य योगी 4 लाख की लगभग, उस हिसाब से तो सारे संसार में 17,500 आदमी आते हैं उस क्षेत्र के अंदर जिसमें भगवत प्राप्ति में आप कहते हो, उन आदमियों को क्या होगा जो बेचारे रहते ही निम्न योगियों में है, जैसे उनको चीज का ज्ञान ही नहीं है कि भाई कैसे जाया जाए, गलत जीवन क्या है, गंभीर जीवन क्या है, तो उनका ऐसी आसक्ति बढ़ी रहती है चले जाती है, उन लोगों को ये उपदेश कहां से मिले?
हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने आदर्श से उनको सिखाएं, अपने आदर्श से सिखाना पड़ेगा उनको। हम देखते हैं कि समाज के वो उच्च व्यक्ति इस होटल में खाना खाने जाते हैं तो सारे लोग उसी होटल में जाना शुरू कर देते हैं। मानो चले कि आजकल समाज के उस वाले ऊंचे स्तर के लोग टेनिस खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, तो सब लोग वही खेल खेलना शुरू कर देते हैं। तो मानो चले आपकी बड़े बड़े इंडस्ट्री सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आ रहे तो सब ऐसे करना शुरू कर देंगे। तो यह आचरती श्रेष्ठ, जैसे हम समाज में आचरण करके दिखाएंगे लोग उनका पालन करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेम आनंदे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, अनंत कोटि।